તારીખ 1/9/1985 પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 378 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 349
દશ લક્ષણ પર્વનો ત્રીજો દિવસ છે. ઉત્તમ આર્ગવ ધર્મ દિવસ કહેવાય છે. ઉત્તમ આર્ગવ એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વકની વિતરાગી સરળતા. આર્ગવ એટલે સરળતા, ઉત્તમ એટલે સમ્યક સરળતા. સમ્યક દર્શન પૂર્વક આત્માના શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ ગુણોના પરિણામ સરળ થઈને સ્વરૂપને વિશે લાગે તે ઉત્તમ સરળતા છે. આત્માના પરિણામ તિર્યક થઈને, અસરળ થઈને, વક્ર થઈને અન્ય પદાર્થમાં લાગે તે અસરળતા છે, તે પારમાર્થિક અસરળતા છે. આ પારમાર્થિક સરળતા છે એવું ધર્મ પ્રગટ કરવાની પ્રેરણા માટેનું આ પર્વના દિવસો ગણાય છે. ગુરુદેવશ્રીનું થોડું પ્રવચન એના ઉપર લઈએ. આત્માના નાયક સ્વરૂપમાં અથવા આત્મ સ્વરૂપમાં કપટનો ભાવ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો તે ઉત્તમ સરળતા છે. નાતા દ્રષ્ટાપણે રહીને નાતા ભાવમાં સ્થિર રહેતા કોઈ પણ પ્રકારના વિકૃત પરિણામો જ ઉત્પન્ન થાય માયા કપટ આદિના તે ઉત્તમ સરળતા છે. આત્મા જ્ઞાન આનંદની મૂર્તિ છે. તે ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ કશાય રહી છે મૂળ સ્વરૂપ. તેને જેવો છે તેવો સમજવો તે જ્ઞાનની સરળતા છે. તેને જેવો છે તેવો શ્રદ્ધામાં લેવો અને અન્ય પદાર્થમાં અને અન્ય ભાવમાં શ્રદ્ધા ન કરવી તે શ્રદ્ધારૂપ સરળતા છે. અથવા અન્ય દ્રવ્ય ભાવની શ્રદ્ધા કરવી તે શ્રદ્ધાની વક્રતા છે. અને એ શ્રદ્ધા સ્વરૂપને શ્રદ્ધે તે સમ્યક દર્શનરૂપ ઉત્તમ સરળતા છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપને ચૈતન્ય સ્વરૂપને જેમ છે તેમ ન માનતા આડોડાઈ કરીને વક્રતા કરીને અસરળતા કરીને પોતાને પુણ્યપાપ વાળો માનવો. હું પુણ્ય કરનારો છું તે અનંત કપટ છે. એવી વક્રતા તે અનંત કપટ છે. કોઈ પરના સંઘથી કે પુણ્ય પરિણામથી આત્માને લાભ માનવો તે વક્રતા છે, તે સરળતા નથી પણ વક્રતા છે, અનાર્યતા છે. એને અનાર્યતા કહે છે. આર્ય એટલે સરળ અને અનાર્ય એટલે અસરળ. જેવું સહજ નાયક મૂર્તિ આત્મ સ્વરૂપ છે તેવું જ્ઞાનવું, જરાય વિપરીત ન માનવું તે સરળતા છે, એ શ્રદ્ધાની સરળતા છે. અને ચૈતન્ય સ્વરૂપની સમજણમાં આડાઈ કરીને કોઈ વિકલ્પ કે વ્યવહારના આશરે લાભ માનવો તે અનાર્યતા છે. શુભ રાગના વિકલ્પથી આત્માને લાભ માનવો તે અનાર્યતા છે. આર્યતા એને લીધી એમાં તે અનાર્યતા છે. વ્યવહાર રત્ન ત્રણ રાગરૂપ છે તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. વ્યવહાર રત્ન ત્રણનો રાગ છે એ પણ જો આત્માનું સ્વરૂપ નથી તો બીજા નીચેના રાગની તો કઈ ચર્ચા કરવાની વાત રહેતી નથી. આત્માનું નાયક સ્વરૂપ પુણ્ય અને પાપ રહિત છે. વ્યવહાર રત્ન ત્રય રૂપ પરાશ્રિત ભાવથી તેને લાભ માનવો તે અનંત કપટનું સેવન છે. એમાં અનંત કપટ મૂકી દીધું છે. મિથ્યા છે ને, મિથ્યા જ છે, માટે મિથ્યા જ છે. પ્રકૃતિના વિભાજનમાં જો સમજીએ તો મિથ્યાત્વ છે એ માયાની પ્રકૃતિમાં જાય છે. ક્રોધ માન માયા લોભ છે ને એમાં મિથ્યાત્વ છે એ માયાની પ્રકૃતિમાં જાય છે. બધા જ્ઞાની સર્વ જ્ઞાનીઓએ સરળતા બહુ મોટો ગુણ ગણ્યો છે. અને સરળતા વિના ધર્મના રસ્તે એક ડગલું પણ આગળ ન વધી શકાય. સરળતા તો પહેલા જ જોઈએ. ગુરુ થી લાભ માનવો એટલે શું? સૈદ્ધાંતિક રીતે એક દ્રવ બીજા દ્રવ નું કરે છે એમ માનવું, એમ લેવું છે. ગુરુ નો વિનય કરવો તે અનંત કપટ નું સેવન છે એમ નથી કહેતા. ઉપકાર બુદ્ધિએ ગુરુનો અત્યંત વિનય આવે એમાં તો દર્શન બંધ પડે. પણ ગુરુથી લાભ માનવો એ અનંત કપટનું સેવન છે. અને એમ જેને મનાય કે મને તો મારું કામ તો મારા ગુરુ કરી દેશે, એ નિષ્ક્રિય થઈ જશે. હું મારા કામનો ભાર આપને સોંપી દઉં છું, હું કઈ જાણું નહીં, એમ કરી નિષ્ક્રિય થઈ જાય. તો સરવાર પણ બુદ્ધિમાં શું છે કે કોઈ પણ ભોગે મારે આપની આજ્ઞાનું અનુસરણ કરવું છે, એનું એમ સરવાર પણ બુદ્ધિ છે. સર્વાર્પણનો અર્થ શું છે? કોઈ પણ ભોગ દેવા હું તૈયાર છું. શેને માટે? કે આપની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરવા માટે. તો એમની આજ્ઞા તો આત્મકલ્યાણમાં પ્રેરે છે. તો કોઈ પણ ભોગે આત્મકલ્યાણ કરવું એમાં અનુચિત શું છે? હા, એટલી વાત જરૂર છે કે કોઈ પણ ભોગે આપ કહો તે રીતે મારે આત્મકલ્યાણ કરવું છે, મારી રીતે નહીં. આટલો ફરક છે. એનું નામ આજ્ઞાંકિત પણ હું કહ્યું, એનું નામ ગુરુચરણનું સેવન કહ્યું. ચરણ એટલે વચન. નથી કહેતા શ્લોકનું પહેલું ચરણ છે, પછી આ શ્લોકનું બીજું ચરણ છે, ચોથા ચરણમાં આમ કહેવા માંગે છે. ગુરુચરણ બે રીતે ચરણનો અર્થ થાય છે. ચરણ એટલે વચન પણ થાય ને ચરણ એટલે પગ પણ થાય છે. ઠીક હૈ, ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન આતા હૈ, ગુરુ પ્રત્યે પરમ પ્રેમાર્પણ ભાવ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, તો ગુરુને લીન હો જાતા હૈ કોઈ, વો ભી ઉનકો દર્શન મોકા અનુભવ ચૂકને કા કારણ બનતા હૈ ઓર જ્ઞાન કી નિર્મલતા કા કારણ બનતા હૈ. વો દશા ભી બીચ મેં आ जाती है। बाकी आखिर में जाके गुरु आज्ञा तो स्वरूप में परिणाम लगाने की है, वो गुरु की आज्ञा है। गुरु कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम तेरे परिणाम मेरे प्रति लगा रख, लगाए रख, ऐसा कहेंगे क्या? देख अंदर में परमात्मा विराजमान है, वो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उसमें तुम लीन हो जा, वो गुरु आज्ञा है तो वो लीन हो जाएगा, वो गुरु आज्ञा का पालन है। तो उपकार बुद्धि में ऐसा आता है कि ऐसा कहने वाला मिलता है कहां जगत में, ऐसा हितोपदेश देने वाला कहां हमको मिलेगा, तो उसका भी बहुमान आता है, वो अपने स्थान में आ जाता है। वरना कई लोग ऐसे भूल करते हैं कि हमने तो आपको सब कुछ सौंप दिया है, अब हमको कुछ करने का नहीं है, आपको सब कुछ हमारा करने का है। तो क्या ऐसा कहने वाला जी परिणाम रहित हो जाता है क्या? तो वो खुद परिणाम रहित नहीं होता है, कहीं ना कहीं परिणाम तो करता है। अब गुरु के आज्ञा अनुसार करता है या अन्यथा करता है, वो तो उनको खुद को जागृति होनी चाहिए। लाभ इससे लाभ मानना वो वक्रता है। गुरु का संग करने का भाव तो विवेक है, लेकिन गुरु से लाभ मानना वो बात वस्तु के स्वरूप में नहीं है, तो बात अलग अलग है। बीच में वो आएगा कि निराश्रय रूप से असंग दशा उत्पन्न होना संभवित नहीं है, तो गुरु के पास जाकर के गुरु का मार्गदर्शन लेगा, गुरु का उपदेश सुनेगा, उसकी आज्ञा को सिरोधारी करेगा। पात्र जीव हमेशा वो जानता है कि पुरुषार्थ तो मुझे ही करना है, पुरुषार्थ कैसे उत्पन्न हो ये श्री गुरु बताते हैं, इसका अनुपम उपकार है। क्योंकि ऐसी रहस्यभूत बात जगत में कोई बताने वाला भी नहीं है और अपने आप जानी जाती नहीं है। बताने वाला जगत में गुरु के सिवा कोई दिखता नहीं और मैं अपने आप जान सकता नहीं, तो मेरे जानने में वो निमित्त पड़े, लेकिन चलना वो रास्ते पे चलना पुरुषार्थ करना वो तो मेरा काम है। उन्होंने जो मार्ग दर्शाया वो उनका उपकार है, जो उपकार विस्मरण करने योग्य नहीं है, ऐसा उपकार बुद्धि में आता है तो वो यथार्थ है इस भूमिका में। निश्चय प्रधानता कितनी थी सुगानी जी की, कितनी निश्चय प्रधानता से वो चर्चा करते थे, लेकिन गुरु के विषय में क्या बोले? मेरे गुरु आकाश से भी महान है, क्या गुरु के प्रति विकल्प आया तो क्या बोले? कि मेरे गुरु तो आकाश से भी महान है और अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है। अनंत तीर्थंकर को अधिक में नहीं लिया, एक गुरु अधिक हो गए ऐसा ही भी नहीं आएगा, वो यथार्थ है अपने स्थान में, ऐसा ही आएगा। गुरुदेव जी खुद ने इस वचन को पढ़ा था, हाँ गुरुदेव ने खुद ने इस वचन को तो पढ़ा था, पर निषेध नहीं किया कि ऐसा क्यों कहते हैं, वो बराबर नहीं है, उसको निकाल दो, ऐसा नहीं किया। ये बात बराबर नहीं है ऐसा नहीं कहा था। जानते हैं बराबर कि ऐसा ही भाव आएगा तो स्वस्थान का विनय है, वो अपने स्थान में ऐसा ही होगा, उसका निषेध नहीं करेंगे। व्यवहार का आश्रय छोड़ करके वहां तो क्या राग का आश्रय छुड़ाया है। निश्चय शुद्ध ज्ञाता स्वभाव को जानना मानना और उसमें स्थिर होना ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप सरल परिणाम रूप आर्जव धर्म है। ऐसे आर्जव का करने का निर्वाण का देव गुरु शास्त्र का उपदेश है ऐसा कहना चाहते हैं। यहां तक रखें। चलते अधिकार में बहन श्री के वचनामृत, वचनामृत 378 मेरी प्रत में पेज नंबर है 137 इस वचनामृत में आत्मार्थ के परिणाम कैसे होते हैं, गृहस्थाश्रम में रहे हुए ज्ञानी के परिणाम कैसे होते हैं और नीच स्वरूप में रमणता करने वाले मुनिराज के परिणाम कैसे होते हैं, ये तीनों के तीन पैराग्राफ में परिणाम दर्शाए हैं और आगे जाकर के मोक्ष मार्ग में कैसे मिश्र परिणाम होते हैं, अत्पत्ति दशा कैसे होती है, इसका भी विशेष वर्णन किया है। कि इस वचनामृत का संक्षेप में विषय यही है, जिसको स्वभाव का महिमा जागृत हुआ है ऐसे सच्चे आत्मार्थी को थोड़ा चला सा फिर से लेते हैं, ऐसे सच्चे आत्मार्थी को विषय कषाय का महिमा टूट करके उसकी तुच्छता लगती है। क्या है जगत के जीवों को विषय कषाय की महिमा है, क्या है विषय कषाय की महिमा है लोगों को। तो जितने जितने पंचेंद्रिय के अनेक प्रकार के विषय हैं उनकी वो महिमा करेंगे, उनका संग्रह करेंगे, परिग्रह करेंगे और इससे अपनी अधिकता भी मानेंगे। देखो हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसी चीज हमारे पास है, जिसको आत्मस्वरूप का महिमा आया या सच्ची पहचान हुई तो वो चीज की कीमत उतनी आती है कि सारे जगत की महिमा छूट जाती है। जगत के जो जो पदार्थ की कीमत आई थी वो कीमत मिट जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं है ऐसा लगता है। उसको सब कुछ लगता है, उसको चैतन्य स्वभाव की समझ में निमित्तभूत ऐसे देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है। देखो क्या किया, जगत के पदार्थ की पर पदार्थ की महिमा गई लेकिन एक बात अलग है, देव गुरु शास्त्र की तो महिमा आई, एक अपने स्वरूप की महिमा आई और एक देव शास्त्र गुरु की महिमा आई।
अंदर महात्मा ने बाहर में देव शास्त्र गुरु,
हाँ
एक बुरा,
जिसको निश्चय आत्म स्वरूप की महिमा और उस पर जोर, आत्म स्वरूप पर विशेष निश्चय का परिणाम में जोर रहता है, ऐसे ज्ञानी और साधक जीव के रागांश में भक्ति का जोर भी उतना ही आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बात बैलेंस नहीं रहेगी, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी या निश्चयाभासी हो जाएगा, ये बात बनने वाली है। और इसका सबूत दो ग्रंथ है हमारे पास, एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, सुगामी जी का जोर बहुत है श्रद्धा के विषय पर, और उतना ही इनके परिणाम में भक्ति जोरदार आई है। साफ साफ वो बात आई है। दूसरा सबूत है नियमसार परमागम। नियमसार परमागम में शायद केवल ज्ञान आदि पर्यायों को परद्रव हे कहा है, वही नियमसार में देवदेव शास्त्र गुरु की भक्ति जो है उतनी जोर से आई है। तो दोनों बात साथ में ही हमेशा रहती है, तभी बैलेंस रहता है। और ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत कुदरती है, नेचुरली ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हो तो वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, ऐसा समझना। विकल्प को ऐसा संबोधन किया, अरे विकल्प अगर तुझे जिंदा रहना है तो गुरु चरण में ले चल। हमको भी कहता है कि हमको भी तू गुरु चरण में ले जा, वरना ये गुरु का दिया हुआ शस्त्र तेरा घात कर डालेगा। अगर तू गुरु चरण में नहीं जाएगा तो तू खत्म हो जाएगा, तेरा जिंदा रहना मुश्किल है। जिंदा रहना हो तो इतनी दया करेंगे, तो गुरु चरण में ले जाएगा तो तुमको जिंदा रहने देंगे। बाकी गुरु चरण के सिवा जो दूसरा विकल्प हुआ तो तेरी मौत आ गई है, दूसरा कोई बात नहीं है। कैसी कैसी बात किया है। आत्मार्थी को चैतन्य स्वभाव की समझ में निमित्तभूत ऐसे देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है। और चाहे जो कार्य करते हुए उसे निरंतर शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति करने की खटक भी रहा करती है कि मेरा स्वरूप मुझे प्राप्त नहीं है, वो मुझे प्राप्त करना ही है। दूसरे कार्य में भी उसको स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य है, वो कभी मिटता नहीं है, वो राय करता है। वो ऐसी चीज नहीं है कि उसको विस्मरण हो जाए और उसका स्मरण करना पड़े, ऐसी चीज नहीं है। वो बात लिया है आत्मार्थी जीव का। अब ज्ञानी की बात करते हैं कि गृहस्थाश्रम में रहे हुए ज्ञानी को शुभाशुभ भाव से भिन्न ज्ञायक का ज्ञायक को अवलंबन लेने वाली ज्ञातृत्व धारा निरंतर वर्तती है। निरंतर वर्तती है क्या है, जो ज्ञानी गृहस्थाश्रम में है पूर्व प्रारंभ के योग से गृहस्थाश्रम में जीव होता है, और कभी ऐसा आत्मज्ञान की प्राप्ति भी उसको हो जाती है तो ज्ञान दशा की भी प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव आते हैं, उसको शुभ भाव भी आता है और उसको अशुभ भाव भी आता है। अशुभ भाव की स्थिति पंचम गुण स्थान तक है, छठे गुण स्थान से अशुभ भाव नहीं होता। तो शुभाशुभ भाव आता है उससे भिन्न अपना नायक स्वरूप है, उसको अवलंबन लेने वाली एक धारावाही दशा इसको ज्ञातृत्व धारा कही है, ज्ञाता धारा कही है, ज्ञान धारा भी कहने में आई है। तो निरंतर चालू रहती है ज्ञानी को, तो स्वरूप को छोड़ते ही नहीं है। ज्ञान की प्रधानता से उसको ज्ञान धारा कहते हैं, पर वैसे वो अनंत गुणात्मक आत्म परिणति है। कैसी है? आत्म परिणति है, जिसमें आत्मा के सभी गुण स्वरूप सम्मुख होकर के स्वरूप में लगते हैं। कोई गुण विशेष अंश में तो कोई गुण कम अंश में, लेकिन सभी गुण के अंश उसमें होने से उसको आत्मधारा भी कहने में आती है। परंतु साथ साथ पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से पुरुषार्थ अधूरा है, पूरा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से अस्थिरता रूप विभाव परिणति विद्यमान है, खड़ी है मैंने विद्यमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिद्ध दशा हो जाती, इसलिए उनको पुरुषार्थ की जितनी कमजोरी है उतनी अस्थिरता है, उतना विभाव परिणाम भी चालू है। अतः उसे गृहस्थाश्रम के अनुसार, गृहस्थाश्रम के लायक शुभाशुभ परिणाम भी होते हैं। ये पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से कितने परिणाम बाहर उदय भाव में उदय में जाते हैं, और जैसा जैसा उदय हो उस गुणस्थान की मर्यादा में रह करके वो गृहस्थाश्रम के लायक शुभ और अशुभ भाव भी उनको होते हैं। कभी शुभ भाव होते हैं, कभी अशुभ भाव होते हैं। हाँ वो तो है ही, क्योंकि वो परिणाम बलवान है, आत्मधारा है, वो बलवान है, वो मुख्य परिणाम है। और जो उदय भाव वाले परिणाम है वो गौण रूप से होने वाले परिणाम है, उसकी मुख्यता नहीं है। यानी स्वप्रयत्न दशा आत्मधारा में है, पर अप्रयत्न दशा कर्मधारा में है। अपना रस और ताकत लगता है शुद्ध परिणाम में, और निरसता होती है उदय के अशुद्ध परिणाम में, ऐसी स्थिति है।
सफलता तो है, निर्बलता क्यों हो रही है? सफलता तो है जिसके कारण से इस तरीके भाव में टिके हुए
हैं। हाँ, सफलता भी है और निर्बलता भी है। पूरी सफलता है ऐसा नहीं है, और पूरी निर्बलता है ऐसा भी नहीं है। निर्बलता कम है और सफलता ज्यादा है। अगर प्रमाण देखे तो प्रमाण में निर्बलता कम है और सफलता ज्यादा है, इसलिए उनकी अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि बढ़ती जाती है, उसको निर्जरा कहते हैं।
गुण श्रेणी निर्जरा
वो, हाँ बहुत बहुत निर्जरा है। गुण श्रेणी मल्टीप्लीकेशन, जितनी निर्जरा हो उसका गुणाकार करके बाकी और निर्जरा बढ़ जाती है। ऐसे स्वरूप में स्थिर रह सकते नहीं, स्वरूप में उपयोग लगता है लेकिन स्थिर रह सकता नहीं, बाहर निकल आता है स्वतः। इसलिए वह विविध शुभ भाव में जुड़ता है, लगता है, उसका उपयोग है, अनेक प्रकार के शुभ भाव में लगता है। शुभ अशुभ में भी अशुभ कम है और शुभ ज्यादा है, इसलिए उनको मुख्य रूप से शुभ का ही बंध पड़ता है, अशुभ का बंध इतना नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है वो बात। इसलिए अशुभ में देगा ऐसा ऐसा नहीं लिखा। स्वरूप में स्थिर रह सकते नहीं, इसलिए वह विविध अनेक प्रकार के शुभ भाव में दौड़ाता है। अशुभ नहीं लिया, शुभ ही शुभ ही लिया है, क्योंकि अशुभ को व्यवहार नहीं बोलते हैं। ज्ञानी के शुभ भाव को ही व्यवहार बोला जाता है, इनके भी अशुभ भाव को व्यवहार बोला जाता नहीं है। मुझे देव गुरु की सदा समीपता हो, क्या मुझे देव गुरु की सदा समीपता हो, कैसे कैसे भाव आता है? उत्तरम चिन्ह में लिया ना, तो भाव कैसे आते हैं? एक ज्ञानी को भी ऐसा भाव आता है कि मुझे देव गुरु की सदा समीपता हो, गुरु के चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्त हो, ऐसा ज्ञानी को भी भाव आता है। मुमुक्षु को तो आता है, ज्ञानी को भी आता है, ऐसा कहते हैं। और ऐसे परिणाम का सबूत ये खुद ही थे, खुद को ऐसे परिणाम आते थे, गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव के ऐसे ही परिणाम कि आपके चरण कमल की सेवा मेरे हृदय में हमेशा हमेशा स्थापित रहो। गुरु गुण संभावना में तो बहुत बात आई है, बहुत बातें आई है। ज्ञानी को भी ज्ञान दशा में गुरु भक्ति कैसी होती है, बहुत सी बातें आई है। इसका मतलब वो नहीं को गुरु से लाभ मानते थे, वो तो उनकी आज्ञा का उत्थापन हो गया, लेकिन गुरु का भी नहीं तो यथास्थान में ज्ञानी को भी आर्य उसका विनय और बढ़ जाएगा। भले ही पुरुषार्थ स्वयं का चलता है, जानता भी है, लेकिन कहेगा ऐसा नहीं। उपेंद्र का उपसंग में है गुरुदेव का उपकार जो किया है इसमें, कि मेरी तो प्रत्येक पर्याय, हर पर्याय में गुरु का उपकार है। उसमें लिए है ना अपने परमागम सार में, परमागम सार जब संकलित किया ना तो गुरुदेव के प्रति थोड़ा लिखने का बोला हमने, आप थोड़ा लिख के दो, एक ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। तो लिखा है इस आत्मा के, मैंने अपने आत्मा के प्रत्येक पर्याय में आपका असीम उपकार है, एक भी पर्याय खाली नहीं मेरी। और कितना उपकार है, असीम उपकार है, वो लिख के दिया था। वो तबियत बहुत अस्वस्थ थे, बोले कि मेरे से लिखा नहीं जाता है। मैंने कहा थोड़ा लिख दो या कुछ भी लिख दो, आज नहीं तो 5-15 दिन, जितना भी दिन लगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लिख के दो। तो फिर पूरा 2 पेज लिख के दिया है। शुभ भाव में ज्ञानी अस्थिरता से जुड़ते हैं, उसमें ऐसे शुभ भाव आते हैं कि मुझे देव गुरु की सदा समीपता हो और गुरु के चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्त हो, इत्यादि प्रकार से जिनेन्द्र भक्ति, स्तवन, पूजन और गुरु सेवा के भाव होते हैं। जिनेन्द्र भक्ति के परिणाम भी आते हैं, जिनेन्द्र का स्तवन भी करते हैं, स्तवन भी करते हैं, पूजन पूजा भी करते हैं, और गुरु के सेवा का भाव भी उसे आता है। तदुपरांत शास्त्र स्वाध्याय के परिणाम भी आते हैं, ज्ञानी है वो शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं। ध्यान करने के भी परिणाम आते हैं, ध्यान और ग्रस्त होते हैं तो दान करने के भी परिणाम होते हैं, और अपनी भूमिका अनुसार पंचम गुण स्थान हो तो अनुव्रत तथा तप वगैरह का शुभ भाव उसको बहुत गुना आता है, यानी सहज आता है, ये सब प्रकार के परिणाम सहज सहज आता है। जब पूर्ण वितराग नहीं है और अवस्था में राग बचा है, पूरा नहीं मरा, थोड़ा बच गया है, जिंदा है तो कैसा है, किस प्रकार का है, किस किस प्रकार का भाव आएगा, वो सहज आएगा, उसका वो हठ नहीं करेंगे। क्यों? व्रत तप लिया ने, वो व्रत तप सहज होता है, हठ से वो कभी करते हैं नहीं है, बिना हठ आता है। ये सब भाव के काल में भी, दरमियान में उसी काल में भी नातृत्व परिणति धारा, ज्ञान धारा तो सतत चालू चालू ही होती है, एक साथ दो धारा चलती है, ज्ञान धारा भी चलती है और शुभाशुभ कर्म धारा भी चलती है, तो दोनों चालू रहती है। ये बात लिया, गृहस्थाश्रम में जो ज्ञानी होते हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया। अब कहेंगे मुनिराज को क्या होता है, निज स्वरूप धाम में रमने वाले मुनिराज कैसे होते हैं, निज स्वरूप धाम में रमने वाले जो मुनिराज है वो तो ऐसे ही दिखने में आते हैं, वो तो स्वरूप में रमणता कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज को भी पूर्ण वितराग दशा के अभाव में विविध शुद्ध भाव होते हैं, उनको भी पूर्ण वितरागता नहीं है, उसका अभाव है, तो उनको भी अनेक प्रकार के शुद्ध भाव उनको भी होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो उसको महाव्रत अहिंसा आदि महाव्रत के परिणाम होते हैं, वो शुद्ध भाव है। 28 मूल गुण पालन करने का जो उनको शुभ भाव आता है, समिति युक्ति आदि, पंचाचार, नानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, विरियाचार, चारित्राचार, वो पंचाचार के परिणाम भी आते हैं, व्यवहार, पंचाचार में 5 प्रकार का व्यवहार का जो आचरण है, और स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि संबंधी शुभ भाव भी आता है। मुनिराज भी कभी ध्यान करते हैं, कभी स्वाध्याय करते हैं, ये सब प्रकार के परिणाम मुनिराज को भी आ जाते हैं। ध्यान का विकल्प, ध्यान मैंने ध्यान का विकल्प आता है, या अभी ध्यान में बैठना है तो उसमें स्वरूप का चिंतन चलेगा और फिर निर्विकल्प ध्यान होगा। ध्यान इत्यादि संबंधी शुभ भाव आता है, क्या लिखा है, शुभ भाव आता है। तदुपरांत जिनेन्द्र भक्ति, श्रुत भक्ति और गुरु भक्ति के उल्लास में भाव भी आते हैं। मुनिराज को भी जिनेन्द्र भक्ति के भाव आते हैं, बहुत से स्तोत्र बनाए के नहीं बताए, कल्याण मंदिर स्तोत्र, हत्ताम्बर स्तोत्र, सब गुणियों के बनाए हुए हैं, विषपहार स्तोत्र, बहुत अनेक स्तुति बनाई है, वो जिनेन्द्र भक्ति करते हैं, श्रुत भक्ति शास्त्र लिखते हैं, वो श्रुत भक्ति शास्त्र की महिमा भी करते हैं और शास्त्र लिखते भी है, वो श्रुत भक्ति है, पर अपने गुरु की भक्ति भी करते हैं, वो बहुत करते हैं अपने गुरु की भक्ति। मुनिराज भी अपने गुरु की भक्ति बहुत करते हैं, उसके उल्लास में भाव भी आते हैं, और अभी उत्तरण चिन्ह में लिखते हैं कैसे भाव आते हैं। हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन होते ही और आपके चरण कमल की प्राप्ति होते मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ, अरे मुझे सर्वस्व मिल गया। आप मुनि होकर के ऐसा कहते हैं, धीरेन्द्र भगवान तो परम गुरु है ना, ओहो आपका दर्शन हो गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण कमल की सेवा मिल गई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जगत में सर्वस्व मुझे मिल गया जाओ। एक दफे तो ऐसे विकल्प आ जाते हैं कि अब कुछ चाहिए है नहीं, मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात आप मिलते मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कोई बाकी रहा नहीं, अब तो सब कुछ मिल गया तो दूसरी चीज मिलने की मेरी अपेक्षा छूट गई, टूट गई। ऐसे अनेक प्रकार से श्री पद्मनंदी आदि मुनिवरों ने धीरेन्द्र भक्ति का बहुत बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है, बहुत भक्ति किया है, ऐसे मुनिराज भी भक्ति भाव में आ जाते हैं। वो पंच पद्मनंदी पंचमिष्टि में भक्ति के अधिकार है क्या, नहीं है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के शुभभाव मुनिराज को भी हठ में आता है, सहज सहज आते हैं, होगा लाने की हठ नहीं करनी पड़ती पर निकालने के भी हठ करनी पड़ती नहीं है, वो अपने स्थान में आते हैं चले जाते हैं, बस साथ साथ नायक का उग्र अवलंबन से साथ साथ अपना स्वरूप का उग्र अवलंबन से मुनि योग्य उग्र ज्ञान धारा भी सतत चालू होती है। उसी वक्त में अपना स्वरूप का उग्र अवलंबन ज्ञानी को वर्तता है और उस अवलंबन के अनुसार परिणति भी उग्रता रूप से परिणति बहुत तेज होती है। गृहस्थाश्रम को गृहस्थाश्रम में ज्ञानी को भी परिणति होती है और मुनिराज को भी छठे गृहस्थान में शुभ भाव चलता है तो परिणति साथ रहती है, लेकिन मुनि की परिणति उग्र होती है, ज्ञानी की परिणति इतनी उग्र होती नहीं है। तो जिसकी परिणति उग्र होती है उनको शुद्धोपयोग जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है, जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाता है, वो तो परिणति के कारण से ऐसा बनता है।
आगे जो आत्मार्थ की बात आई, आत्मार्थ तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता इसलिए वो गुरु में स्थिरता करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ज्ञानी है तो वो तो अपने स्वरूप में स्थिर हो सकता है, और यहाँ पे जो मुनिराज की बात आई तो अपने स्वरूप में और भी स्थिर हो सकता है, तो उनके केस में वो अपने गुरु की भक्ति करने लगेगा तो वो तो उनके गुरु की उस भूमिका में आज्ञा की विराधना नहीं होगी।
नहीं, विराधना इसलिए नहीं होगी कि उनको सहज हो जाता है, करते नहीं है, सहज हो जाता है, और पुरुषार्थ यहां से हटकर भी स्वरूप में जाने का चालू रहता है तो स्तुति करते करते मेल विकल्प हो जाता है। क्या होता है, स्तुति करते करते निर्विकल्प हो जाता है। अब थोड़ा अंदर की बात करें, ठीक है, प्रश्न निकला है कि बोल गुरु शास्त्र में अपने गुरु में भी वितरकता का दर्शन करता है, तो वितरकता का उनके ज्ञान में गुरु की वितरकता रही तो अपने वितरक भाव को दृढ़ीभूत होने में वो निमित्त हो जाएगी, तो विकल्प का अंश टूट करके शुद्धोपयोग में चले जाएंगे मुनिराज। उसमें भी वो वितरकता का दर्शन करता है, जिनेन्द्र परमात्मा में भी वितरकता का दर्शन करता है, गुरु में भी वितरकता का दर्शन करता है, और शास्त्र लिखते लिखते पद पद में वितरकता का भाव उनको मुख्य रहता है। क्योंकि शास्त्र तात्पर्य वितरकता है, गाथा तात्पर्य भी वितरकता है, तो सर्वत्र वितरकता के पीछे ही लगे हैं। स्वमे तो वितरकता है ही, लेकिन पर में भी वितरकता के अलावा दूसरी बात उनको नहीं है, ऐसी बात है। हाँ, उनको अंदर में केंद्र स्थान एक ही जगह पे है, वितरकता वितरकता वितरकता, बस विकल्प में विधिविधता है, लेकिन ज्ञान में एक वितरकता ही केंद्र स्थान में रह जाती है, और इसी की महिमा है, ऐसी बात है। महिमा तो इसकी है, शुभराग की और दूसरे प्रकार की महिमा नहीं है। ऐसा है, जितना राग है इतना दुख है, और जितनी वितरकता है, क्योंकि अकेला राग भी नहीं होता, अकेली वितरकता भी, जितनी वितरकता है उतना सुख है, और एक परिणाम में दो भाग हो जाते हैं, एक ही परिणाम में दो भाग हो जाते हैं, और दोनों अपने अपने स्थान में चलते हैं बराबर। वो विभावांश है तो क्षय पामता पामता सर्वथा क्षय हो जाएगा, और स्वभाव अंश वो पूर्ण हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। पहले से वो बात है,
वो धारा चली गई वितरकता देखने की सब में,
वही वही प्रकार की है, एक ही प्रकार है, दूसरा प्रकार नहीं है। अपने गुरु में तो वितरकता प्रकट है कि नहीं है, जिनेन्द्र भगवान में वितरकता प्रकट है कि नहीं है,
वही देखने का है,
तो वही देखने का है, वही देखते हैं, दूसरा कुछ देखते ही नहीं है, दूसरा कुछ
देखते ही नहीं,
बस वितरकता सिवाय कुछ देखने का नहीं है। अंतर्मुखता वितरकता वितरागी शांति, उनका जो स्वरूप है वो हमारा स्वरूप ऐसा है, ऐसा सीधा आए बिना रहेगा नहीं। देखो बाहर में संसारी जीव दूसरे की भी महिमा करता है कि नहीं करता है, देखो अमेरिका में तो ऐसी ऐसी गाड़ी आजकल बनी है, कार ऐसी बनती है, एरोप्लेन ऐसे बनते हैं, मकान ऐसे बनते हैं, रास्ते ऐसे होते हैं, चीज वस्तु ऐसी ऐसी मिलती है वहां, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको भी ऐसा होना, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे का वैभव की प्रशंसा करने वाला स्वयं ऐसा वैभव चाहता है तो प्रशंसा करता है, ऐसे देव गुरु का जो आत्मवैभव है उसकी स्तुति उसके गुणगान उसकी भक्ति करने वाला ऐसा होना चाहता है, वो बात अंदर से निकलती है, ये बहुत नेचुरल है। हाँ, तभी सम्यक्त से पहचानोगे तब सर्वज्ञता पहचानने में आएगी, मैं ऐसा कहने का अभिप्राय है। और दोनों साधक दोनों की बात करते हैं, साधक को माने मुनिराज और सम्यक दृष्टि श्रावक दोनों को साधक बोल दिया। जो शुभभाव आते हैं, जिस जिस प्रकार के शुभभाव आते हैं, वो ज्ञातित्व परिणति से विरुद्ध स्वभाव वाला होने से अकुलता रूप से दुख रूप से भजन में आता है, आया कि नहीं आया, प्रश्न का उत्तर दे दिया है बिना प्रश्न पूछे ही, प्रश्न उठता है तो उसका भजन कैसे होता है, कि दुख है वो दुखी लगेगा, दुख सुख कैसे लगेगा, दुख को जो सुख लगता है जिसको, उसको तो भ्रांति हो गई है, तो भ्रांति से तो होना भी संसार चला, और ज्ञान होने से ऐसा थोड़ी ना होता है कि दुख भी सुख लगने लगे,
नहीं
ऐसा कभी बनता
नहीं है,
नहीं है। इसलिए साधक को मैंने दोनों को मुनि को और समूह दृष्टि श्रावक को जो शुभ भाव आता है और व्यापक परिणति से विरुद्ध स्वभाव वाला होने से यानी शांत परिणमन से निराकुल परिणमन से विरुद्ध स्वभाव वाला होने से आकुलता रूप से दुख रूप से वेदन में आता है, अनुभव में उसका दुख होता है। जितना भी अंश हो वो दुख रूप है, दुख में सुख नहीं, सुख में दुख नहीं। दुख रूप वेदन में आता है इसलिए भेद रूप जानने में आता है। दुख कौन पसंद करेगा? ज्ञानी है वो तो विवेक वाला है, वो तो दुख पसंद करते
नहीं है,
नहीं है तो उसका निषेध आए बिना रहेगा नहीं। फिर भी भूमिका में आए बिना रहते
नहीं
है, ये है ये बुद्धि से जानते हैं, फिर भी भूमिका में अपनी भूमिका में आए बिना रहता
नहीं है।
तो क्या सूचित करता है कि आगे की भूमिका में गया नहीं और पीछे जाने वाला भी नहीं है, वो अपनी भूमिका के राग में आएगा, मर्यादित है वो बात। तकलीफ कहां पड़ती है? देखो कोई ज्ञानी भक्ति करते हैं, इंद्र करते हैं भगवान की, भगवान का जन्मोत्सव होता है तो उसी वक्त इंद्र को समाचार मिलता है, मां तो पहले से उसने देव देवियां सेवा में तो रख ली है, भगवान के माता पिता की सेवा में देव देवियां को तो पहले से भेज दिया है। जो भगवान का जन्म होता है तो वहां उनको समाचार मिलता है, पर उनको जो अवधि ज्ञान से भी पता
लगता है।
चलता है तो सीधा सभी काम को छोड़ करके क्या कोई काम उसको महत्व वाला सब काम को छोड़ करके सीधा भगवान के पास भक्ति के लिए आ जाता है। और पैर में घुंघरू बांध करके नाचता है, इतनी भक्ति करता है और उत्साह दिखता है। वो बात लिया है सुखानी जी ने दृष्टि प्रकाश में, वो बात लिया है। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगे ओ हो इंद्र को कितना उत्साह है, कितना उमंग है भगवान की भक्ति में, कितना उत्साह से उमंग से रस से भगवान की भक्ति कर रहा है, कैसी भक्ति चलती है। अंदर में उसको दुख भाव जानते हैं,
दुख भाव
वो कैसे, बाहर में तो लोगों को भ्रांति हो रही है कितनी भक्ति समाते नहीं है उसको, तो अंदर में दुख कैसे जाने। उल्लास भी दुख रूप होता है, वो कैसे होता है वो तो बात कहने जा रहे थे। देखो आपका भूल से कोई ऐसा अपराध हो गया, कोई मर गया, कोई ऐसा कोई हो गया तो कोर्ट में तो उसकी सजा मौत के सामने मौत देते हैं। अब परिस्थिति देख करके जैसे कैसे भी जज साहब को ऐसा लगा कि उनकी अनजाने में भूल हो गई है, जाने दो उसको, तो उनको 5-15 दिन की सजा कर देंगे, वरना तो फांसी भी दे सकते हैं, जन्म टिप की भी सजा दे सकते हैं, लेकिन 5-15 दिन के लिए हाँ आप कैद में चले जाओ, कोठड़ी में रह जाओ, बाद में आपका छुटकारा हो जाएगा। तो उसको मालूम था मर गए अपन, तो फांसी के फंदे पे
मर गया,
सब जाएंगे। इसके जगह बहुत इतनी कम सजा हुई तो हर सजा का नहीं हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार है, क्या कहेंगे सजा देने वाले को, क्या बोलेगा?
बहुत
आभार, आपकी बहुत शुक्रिया है, बहुत आभारी हूँ आपके, आपकी कृपा इतनी है कभी हम विस्मरण करेंगे
नहीं।
लेकिन अंदर में क्या है 15 दिन की मजा आएगी ऐसा है क्या?
नहीं
है, कैद खाने में जेल में 15 दिन में बहुत आराम रहेगा ऐसा है क्या?
नहीं।
एक क्षण भी वास होगा
नहीं,
नहीं एक क्षण भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, वो अपेक्षित बात होती है। क्या अपेक्षित बात होती है? ऐसे हो जाता है, इंद्रा आदि को भगवान की भक्ति हो जाती है और वो आनंद से उत्साह से करते हैं, लेकिन अंदर में उसको दुख भाव जानते हैं। ऐसा एक साथ डबल रोल में काम होता है, होता है कि नहीं होता है? संसार में भी होता है। एक और दृष्टांत ले लें। हाँ विज्ञान वही है, जासूस होता है। क्या जासूस होता है? दुश्मन के लश्कर में दुश्मन का सैनिक बन करके रहता है क्या? और उसकी जो लड़ाई की या लड़ाई की सामग्री की सब जानकारी के लिए अंदर घुस गया है क्या?
जानकारी लेने को घुस गया,
अंदर की जानकारी लेने को घुस गया है, तो उतना सावध रहेगा कि इनके जो नीति नियम है उसका भंग कभी करके कभी भी अपने बॉस के सामने आएगा नहीं। दूसरे लोग भंग करेंगे, उनको उसका सजा भी मिलेगी। ये जो स्पाई है ना, चुस्त रूप से पालन करेगा जो मिलिट्री के रूल्स है, है? तो मिलिट्री के रूल्स को पूरा पूरा पालन करेगा और बहुत उत्साह से पालन करता है, ऐसा उनके परिणाम दिखने में, चेष्टा दिखने में। आइए अंदर में क्या है? अंदर में सबको खत्म करने की बात है। ऐसे ज्ञानी सभी विभाव परिणाम को खत्म करने के लिए है, करते हैं तो खत्म करने के लिए, बढ़ाने के लिए
नहीं।
और इसका सबूत है कि ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में जिनेन्द्र आज्ञा अनुसार व्यवहार के जितने भी परिणाम है वो क्षण क्षण वो तोड़ते जाते हैं, घटता जाता है, कम हो जाता है, आखिर में अंते थाए निज स्वरूप में सब पूरा खत्म हो जाएगा, स्वरूप में लीन हो जाएगा मेरा, और खुद ही जिनेन्द्र बन जाएगा। इसलिए तो आकुलता रूप से दुख रूप से विजन में आता है, ये रूप जानने में आता है, फिर भी इस भूमिका में आए बिना रहता
नहीं है,
वरना कौन सा आएगा इस भूमिका का? आएगा जब राग बच गया है, तो ऐसे राग आए बिना रहेगा। यहाँ तक
रखिए।